الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. نعم، صلى على محمد وآل محمد وعجل. کچھ مسائل کی وجہ سے آج تاخیر ہو گئی، اس کے لیے معذرت خواہ ہیں. ان شاء اللہ تعالی وقت کی رعایت آئندہ کے دروس میں کریں گے. ماہ مبارک رمضان کے مناسبت سے تفسیر موضوعی کے عنوان سے ہم نے ابلیس اور شیطان اور اس کے احوال قرآن کریم کی نگاہ میں موضوع کو مطرح کیا تھا. گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں ابلیس کا معنی لغتاً گزر چکا ہے، اور اس کے ضمن میں جو اقوال تھے وہ بیان کیے گئے کہ تین احتمال ہیں کلمہ ابلیس کے، کہ یہ بالسا سے ہے یا بالوس سے ہے یا بالش اس سے ہے. ابلیس اصل نام نہیں ہے، بلکہ ایک صفت اور ایک وصف کی وجہ سے اس کا یہ نام پڑ گیا، اور قرآن کریم نے یہ نام اس کا قرار دیا ہے. 11 جگہوں پہ قرآن کریم میں ابلیس کا تذکرہ وارد ہوا ہے، جن میں سے سورہ حجر کے ضمن میں ہم نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں چند نکات ذکر کیے کہ سورہ حجر میں دو دفعہ دو آیات میں کلمہ ابلیس وارد ہوا ہے، اور آدم علیہ السلام کی خلقت سے مربوط واقعہ ہے. عبرانی زبان میں ابلیس کو عزازیل کہا جاتا ہے، اور عربی زبان میں حارث اس کا نام ہے، اور بعض جگہوں پہ عبد الحارث بھی آیا ہے، اور اس کی کنیت ابو المرہ کے نام سے معروف ہے. اختتام ہمارا جس بات کے اوپر ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نزول آدم علیہ السلام سے پہلے ابلیس اور آدم علیہ السلام میں جھگڑے اور دشمنی کو ذکر کیا ہے، اور جو دشمنی خلقت آدم سے آغاز رکھتی ہے وہ تا قیامت دشمنی قائم رہے گی، وہ دشمنی ختم نہیں ہو سکتی. پھر دشمنی تھی کس بات کے اوپر، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر اس نقطے کو ہم فراموش کر دیں تو اطاعت الہی و دین الہی سے ربط پیدا نہیں کر سکیں گے. اس لیے قرآن کریم کی آج آیات دیگر آپ کی خدمت میں پڑھی جائیں گی. آج کوشش یہ تھی کہ ابلیس کا تعارف، خاندانی تعارف بھی کچھ کرایا جائے، جو بعض کتب میں ہمارے وارد ہوا ہے، اور اس سے کوشش ہماری یہ ہوگی کہ معرفت دشمن کی حاصل کی جائے، تاکہ دشمن سے دشمنی بھی کر سکیں، اور اس کی دشمنی سے اپنے آپ کو اس کے وار یا اس کی پلاننگ اور اس کے حملوں سے بچا بھی سکیں. کیونکہ جو دشمن سے دشمنی نہیں کرتا تو دشمن اس کے اوپر راضی نہیں ہو جاتا، وہ ہم سے حتماً دشمنی کرے گا، اور جس کو دشمن کے وار سے بچنا نہیں آتا، اس کے حملے سے بچنا نہیں آتا، یا اسے جنگ کے طریقے نہیں آتے، وہ ہر صورت میں انسان شکست کھا جائے گا. لہذا قرآن کریم کا ایک وسیع موضوع ہے. قرآن کریم کی 200 سے اوپر تقریباً آیات بنتی ہیں جو شیاطین، شیطان اور ابلیس اور ان چیزوں سے وابستہ بن جاتی ہیں، اس لیے چھوٹا موضوع قرآن کریم کا یہ نہیں ہے. اچھا، اگر ہم شیاطین کے اعمال کو مد نظر رکھیں تو پھر اس کی تعداد تو کئی چند ہزار آیات کے اوپر مشتمل ہو جائیں، اس قدر یہ قرآن کریم کا وسیع موضوع بن جاتا ہے. اس لیے دشمنی کس چیز میں تھی؟ کیا اس دنیا کے اندر اگر ابلیس اور ابلیس کے ماتحت جو ولایت قائم ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھیں تو کیا چیز برپا ہو رہی ہے؟ اس کو قرآن کریم افکار اور نظریات اعتقادات کے مرحلے پہ ہدایت کرنا بشر کی چاہتا ہے، تاکہ وہ بشر حساس ہو اس مسئلے پہ. لہذا آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ ابلیس کو بالوس جو کہا گیا، یہ بھی ایک وصف ہے. بالوس کہتے ہیں خلط ہونا، یعنی وہ جو اپنے باطن کے اندر مخلوط تھا، وہ معصیت کار بھی تھا، اطاعت گزار بھی تھا، لیکن اس کے معصیت کا پہلو آشکار نہیں ہوا، یہاں تک ایک آزمائش میں مبتلا ہوا، اور اس آزمائش میں مبتلا ہو کے اس کا مخلوط ہونا، خلط ہونا، غیر خالص ہونا وہ آشکار ہو گیا، اس لیے اس کا نام ابلیس پڑ گیا. بلاسا سے لے تو بلاسا کہتے ہیں شدید مایوسی، ایک ہے عام مایوسی اور ایک ہے انتہائی شدید مایوسی، کہ جس کے بعد کسی قسم کی رحمت سے تعلق قائم کرنے کا جذبہ اس کے اندر موجود، وعلیکم السلام، نہ ہو. وعلیکم السلام. لہذا ہمارے پاس یہ مطلب واضح ہوا کہ کلمہ ابلیس کا جہاں تک تعلق ہے، کلمہ ابلیس اسی سے وابستہ ہے کہ کلمہ ابلیس اس لیے اسے کہا جاتا ہے ابلیس چونکہ وہ شدید ترین طریقے سے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اور اس کا طریقہ واردات بھی یہی ہے کیونکہ اس نے ایک برا عمل کیا، اور برا عمل کیا سبب بن گیا؟ اس کے مایوس ہونے کا، شدید مایوس ہونے کا۔ مایوسی خود ایک عذاب ہے، شدید مایوسی خود عذاب ہے، کیونکہ مایوسی میں انتہائی پستی کا احساس ہوتا ہے، مایوسی میں انتہائی محتاجی کا احساس ہوتا ہے، اور پستی اور حقارت کی وجہ سے غضب اندر شدید طور پہ اٹھتا ہے، اور اس غضب اور پستی کے احساسات سے جب ترکیب انسانی نفس میں احساسات پاتے ہیں تو وہ خاموش اسے کر دیتے ہیں غم اور حزن کی وجہ سے۔ اس کیفیت کو کہتے ہیں ابلاس۔ قرآن کریم نے مجرمین کی صفت، قرآن میں 5-6 جگہ یہ کلمہ باب افعال سے استعمال ہوا ہے، ثلاثی مجرد میں یہ کلمہ بلاسا استعمال نہیں ہوتا۔ ابلاسا، یبلسو، ابلاس، مبلسین یا مبلسون، یہ کلمہ قرآن کریم میں تکرار کے ساتھ مجرمین کی صفت کو بیان کرنے کے لیے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ایسی شدید مایوسی کے اندر پستی اور حقارت کے احساس کی وجہ سے اور غصہ اور غضب کے ملے جلے کیفیات کی وجہ سے بالکل خاموش ہو جائے، نہ بول سکے۔ خالی مایوسی کو ظاہر کرتا ہے کلمہ یائسا، لیکن اگر شدید مایوسی کو ظاہر کیا کرتا ہے، مایوسی بیان کرنا ہو تو اس کے لیے کلمہ ابلاس بیان کرتا ہے، یہ کلمہ عربی زبان میں، اور اسی سے ابلیس ہے۔ ابلیس کا جو جھگڑا ہوا تھا، وہ اس نے کیا عمل انجام دیا؟ عمل اس نے یہ انجام دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب ہمہ ان مسنون سے ایک پیکر بنایا آدم علیہ السلام کا، اور اس آدم علیہ السلام میں جب اپنی روح کا نفخ تو فیہ من روحی، اپنی روح کو اللہ نے اس میں پھونکا، فقعوا لہ ساجدین، تو سارے کے سارے سجدہ خم ہو گئے اس کے سامنے۔ لیکن یعنی اور جتنے بھی ملائکہ تھے وہ کیا ہیں؟ وہ سارے کے سارے وسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تاکید در تاکید ہے کہ سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس ابا، اس نے انکار کر دیا۔ یہ پہلی چیز، جو اللہ کی اطاعت سے انکار کرنا ہے یا اللہ کے مقابلے میں اس کا آنا ہے، یہ سب سے پہلے بڑا جرم قرار پایا۔ اور اس کے بعد دوسرا اس نے جو جرم کیا، وہ حقیر سمجھا، پس سمجھا، دوسرا تکبر، دو تکبر کیے گویا کہ۔ اور یہی دو تکبر اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں وارد ہوا ہے کہ تکبر کی دو قسمیں، ایک حق کے مقابلے میں تکبر ہے کہ حق کو پست سمجھنا، اپنے آپ کو بالا تر سمجھنا، اور حق کو قبول نہ کرنا، یہ اس تکبر کی تو معافی نہیں ہے اصلاً۔ اور ایک تکبر ہے لوگوں کے مقابلے میں تکبر، کے لوگوں کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو ان سے بالا تر اور بڑا سمجھنا، کسی بھی کمال کی وجہ سے یا کمال نہ بھی ہو، کیونکہ تکبر ایک تخیلاتی امر ہے فقط۔ تو یہ دو تکبر کیے، پہلا تکبر ابا ہے، اس نے اللہ کی اطاعت کا انکار کیا، اللہ کے حکم کا انکار کیا، اور دوسرا تکبر وہ اس نے قیاس کیا اور کہا کہ آگ جو ہے وہ بالا ہے، برتر ہے، اور یہ بدبودار مٹی پست ہے۔ اس لیے عرض کیا کہ بعض علماء لکھتے ہیں کہ اگر اس بدبودار مٹی سے تشکیل پانے والے پیکر کے اندر جو نورانیت اللہ نے رکھی ہے، اس نور کی طرف اس کی توجہ چلی جاتی تو یہ قیاس کبھی بھی وہ نہ کرتا۔ لہٰذا اس کے اندر ایک تکبر اور بڑائی کا احساس پیدا ہوا، اور اس بڑائی کی وجہ سے اس نے دوسرے مرحلے پہ تکبر کیا کہ آدم کو پس سمجھا۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کلمے پہ غور کریں، وسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے کے سارے ملائکہ کیا ہیں؟ اس کے، آدم علیہ السلام کے سجدہ ریز ہو گئے۔ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، ہر شے کا سجدہ اسی کے مطابق ہوتا ہے، چونکہ فرشتوں کی تو پیشانی نہیں ہوتی، اور وہ جگہ بھی زمین کے اوپر نہیں تھی، جب زمین ہی نہیں تھی تو کس جگہ پہ سجدہ کرنا، لہذا ہر چیز کا سجدہ ہے اوج انکساری اور توازو کی علامت، اوج انکساری اور توازو کی علامت۔ یہ جو اوج انکساری اور توازو ہے، اس کے اظہار کے لیے بندے اپنی پیشانی جسے وہ سب سے بالا سمجھتے ہیں، اور ناک جسے عزت کی علامت سمجھتے ہیں، وہ اس ہستی کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یہ انتہائی تزلزل तज़लील की एक अलामत है। सजदा इसी का नाम है कि जो सबसे औज की तवाज़ो है, सबसे औज की आजजी और इनकसारी है, उसे बरपा करना सजदा कहलाता है। तो फरिश्तों ने भी अपने मुताबिक वही अमल अंजाम दिया। सितारे, जैसा यूसुफ अलैहिस्सलाम के हैं कि सूरज चांद सितारे उन्होंने सजदा किया, वो भी यही मुराद है। वाइल्ला उनकी पेशानियाँ तो नहीं बन गई, बल्कि उनके लिए जो औज आजजी और इनकसारी है उसे जन्म दिया। अच्छा, यहाँ पे जो नुक्ता है कि फरिश्ते मातहत, फरिश्तों ने सजदा किया किसको, यानी आदम के सामने इस तरीके से सर तस्लीम खम है कि अपने पूरा वजूद आदम अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया। क्या मुराद कि अल्लाह सुबहानो ताला ने इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, ये असल झगड़े का मोरद है। अल्लाह ने ज़मीन के ऊपर क्या करार दिया है, आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा करार दिया है। खलीफा का क्या मतलब है? खलीफा का ये मतलब है कि अल्लाह सुबहानो ताला का ये खलीफा अल्लाह की जानिब से तमाम के तमाम अवामिर को और तमाम के तमाम नवाही को इस कुर्रे अर्श के ऊपर नाफिज करेगा। और इसकी वसअतें अल्लाह ने ये रखी हैं कि तमाम फरिश्तों के इसके सामने मातहत कर दिया, सर तस्लीम खम कर दिया। यानी हाकिम कौन है अल्लाह ताला के बाद? यही खलीफातुल्लाह, जिसे इंसान कामिल कहते हैं, जिसे हुज्जत खुदा कहते हैं। लिहाजा हुज्जत खुदा का यह हक बनता है कि वो कुर्रे अर्ज के ऊपर बादशाहत करे, हाकमियत करे। उसका यह हक बनता है कि वो अल्लाह सुबहान तआला की विलायत को संभाले भी और उसे नाफिज भी करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस विलायत के ऊपर किसको करार दिया है? अपने खलीफा को। इबलीस ने इस खिलाफत के ऊपर निज़ा किया है। झगड़ा इबलीस का कहाँ पर है? खिलाफत पे। इबलीस कहता है मैं बालातर हूँ, मेरे मातहत सारे के सारे आए। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम क्या फरमाएंगे? मैं बालातर हूँ, अल्लाह ने मुझे वली बनाया है, मेरे मातहत सारे चले। और अमलन अल्लाह ताला ने किसके मातहत सबको करार दिया? आदम अलैहिस्सलाम के। आदम अलैहिस्सलाम के जानशीन आज कौन है? आज कौन है वारिस आदम? व नूह, इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ। लिहाजा सारा झगड़ा खिलाफत पे चल रहा है। इसीलिए अर्ज किया, जो शख्स भी दीन इलाही को, हुज्जत इलाही व खलीफा इलाही को तर्क करके इख्तियार करे, वो दीन भी दीन इबलीसी व शैतानी है। असल कुर्रे अर्ज के ऊपर झगड़ा ही ये है। इबलीस कहता है मेरी विलायत और मेरी दौलत और मेरा हुक्म और सारे मेरे सामने तस्लीम खम हो। इस जगह पे आदम अलैहिस्सलाम और हुज्जत इलाही का क्या तकाजा है? अल्लाह ने मुझे वली बनाया है, लिहाजा मेरी विलायत, चूंकि अल्लाह ने मुझे वली बनाया और ये अल्लाह की विलायत है और अल्लाह का निज़ाम चले अल्लाह की ममलिकत के ऊपर। यहाँ पे इबलीस और आदम का असल में टकराव है, आदम अलैहिस्सलाम व इबलीस का टकराव है। वाहिल्ला दोनों अल्लाह ताला के सामने हैं। हाँ, आदम अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से इबलीस अल्लाह से टकरा रहा है, बराह रास्त अल्लाह से नहीं टकरा रहा। आदम अलैहिस्सलाम को बहाना बनाया, आदम अलैहिस्सलाम पे कियास किया, आदम अलैहिस्सलाम के मसले के ऊपर वो अल्लाह से टकराया। ये बात जब हमारे लिए वाज़े होगी तो यहाँ से आपके लिए एक नया माना जो इसी से मतरा होता है वो आश्कार हुआ। मकतबे तशय्यो में जो हुज्जत इलाही व खलीफत इलाही की इस कदर अहमियत है, उसका सबब क्या है? क्योंकि अल्लाह सुबहान तआला ने जो कायनात खल्क की है, उस कायनात का निज़ाम ही ये रखा है कि खलीफतुल्लाह के सामने सर तस्लीम खम हो जाओ, और सर तस्लीम खम होते हुए खलीफतुल्लाह की राह से, इसकी इताअत से, इसके ज़रिए से जब तुम अल्लाह तक पहुँचोगे तो ये इलाही रास्ता, ये सिरात मुस्तकीम है। अगर तुमने इसको तर्क करके कुछ हासिल किया या कोई राह इख्तियार की, ये इनहराफी राह है, ये गुमराही है। बेशक नमाज़ें पढ़ो, उम्रे करो, ज़ियारात करो, कसीदे पढ़ो, नाते पढ़ो, तिलावत करो, हिफ्ज करो, जो भी करते हो, अगर इस राह को छोड़ के तुमने किया तो ये तुम दीने शैतान के ऊपर हो, ना कि दीने खुदा के ऊपर हो। दीने खुदा वो अपने अवलिया से आता है, अम्बिया व रसूल अलैहिस्सलाम और उनके बाद औसिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला। इसलिए आज के दौर में आप ये देखें ना, इनकलाबी इस्लामी की कामयाबी के बाद एक फकीह बुजुर्ग, उसने नियाबत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम में हुकूमत कायम की, नियाबत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम में। और उस हुकूमत के क़याम का किसी भी मुल्क को कोई नुकसान नहीं ज़ाहिर पहुंच रहा, ना किसी की तजारत को मसला पेश आ रहा है, ना किसी मुल्क की जान और माल को ख़तरा मौजूद है। इस फ़कीर बुजुर्गवार की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए जब से ये क़याम में आई है तब से पूरी दुनिया की ताकत इसको खामोश करना चाहती है। आज ईरानी से दुश्मनी है या विलायत फ़कीह की हुकूमत से दुश्मनी है, इस टाइम जितने भी महाज बने हैं वो ईरान और ईरानी के ख़िलाफ़ बने हैं या हुकूमत इस्लामी व विलायत फ़कीह से ये महाज बने हैं। लिहाजा आपको यहाँ पे भी ये बात समझ आई कि असल टकराव इस जगह पर आता है। आइए अब हम चंद आयात पढ़ते हैं और उनसे मज़ीद आगे नतायज हासिल करते हैं। लेकिन हमें ये, मैं दोबारा आपकी खिदमत में तकरार कर दूं कि अगर खिलाफत व हुज्जत इलाही इससे रब्त जोड़े बगैर कोई भी अमल नेक अंजाम दे, आपको कोई ख़तरे का एहसास नहीं होगा। क्यों ख़तरे का एहसास नहीं है? क्योंकि दुश्मनी नहीं ईजाद हुई। दुश्मनी कब ईजाद होती है? जब मुश्किल हाकमियत और राहबरियत, जब दुश्मनी तब ईजाद होती है कि जब खिलाफत की बात आ जाए। जब बात सियासत और खिलाफत तक नहीं पहुंची, तो कोई दुश्मनी ईजाद नहीं होगी। आप करोड़ों अफराद आज़ादारी करें, करोड़ों अफराद हज करें, आप अरबाइन के 3-4 गुना बड़े मजमे बना दें, वो दुश्मनी नहीं ईजाद हो रही। दुश्मनी ईजाद कब होगी? कि जब हुज्जत इलाही के तरीक़ से अल्लाह की इबादत व बंदगी की जाए और हुज्जत इलाही के सामने सर तस्लीम खम किया जाए, उसके इताअत की जाए, अवामिर को माना जाए, नवाही से इज्तनाब किया जाए जिनसे उन्होंने मना किया है। अब इबलीस ने अपनी इस जगह पे हुकूमत कायम करनी है, लिहाजा इबलीस ज़मीन के ऊपर आके कैसे हुकूमत को कायम करेगा? उसने हुकूमत कायम करने के लिए, कि आज हम उसके कुछ अहवाल को पढ़ेंगे आल औलाद के एतबार से, लेकिन ये वाले मज़ामीन जैसा कल अलकाफ़ी की हमने रिवायत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम जो अलकाफ़ी में मौजूद है किताबुल ईमान वल कुफ्र बाब नंबर 160 बाबुल इज़ाअ में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दो किस्म की दौलत है। दौलत यानी हुकूमत दो किस्म की है, सल्तनतें दो किस्म की हैं। एक सल्तनत क्या है? दौलत तो आदम। और दूसरी दौलत कौन सी है? दौलत तो इबलीस। वाज़े इमाम ने फरमाया एक दौलत आदम है और दौलत इबलीस है। दौलत आदम में ऐलानिया अल्लाह की इबादत होती है, ऐलानिया सारी इबादत अल्लाह की होती है, यानी अल्लाह ताला के मुकाबले में जितने शिरकिया निज़ाम, जितने शिरकिया अफकार और नज़रियात और इतकादात हैं, सबको इनकार किया जाता है और अल्लाह की इबादत जन्म लेती है। और दौलत इबलीस में क्या होता है? दौलत इबलीस में इबलीस की इबादत अल्लाह की सिर्री इबादत होगी, इबलीस की फिर इताअत होती है। इस जगह पे अगर आप दिक्कत करें, आज के दिन दुनिया के अंदर अगर गौर किया जाए, बातिल की असास है इबलीस से। और इबलीस को क्या चाहिए? हुकूमत चाहिए अपनी। अच्छा, इधर एक सवाल हम उभारते हैं, फिर हदीस की तरफ मुंतकिल होते हैं। इबलीस की हुकूमत अगर कायम होना चाहे तो कब कहेंगे कि इबलीस की हुकूमत कायम है? एक सूरत हमारे पास बनती है, आप कहेंगे कि जब इबलीस की चले, इबलीस का कहा हुआ अंजाम पाए, जो इबलीस चाहता है वो अंजाम पाए, तब उसकी हुकूमत कहलाएगी, उसकी दौलत कहलाएगी। हुज्जत इलाही की हुकूमत कब कहलाएगी? जब हुज्जत इलाही की चले, वो कुव्वत के साथ इस दुनिया के ऊपर अदल को कायम करें। अब दोनों के अपने आसार हैं, दोनों के आसार हैं। इबलीस के आसार ये हैं कि जब भी उसका फरमान चलेगा और उसकी हुकूमत चलेगी, तो उसके नतीजे में चाहे दीन की राह से आए या दुनिया की राह से आए, वो उसका टकराव पैदा होगा जो हुज्जत इलाही बरपा करना चाहते हैं। अगर दोनों मुआफिक हो जाएं फिर तो दुश्मनी ख़त्म। दुश्मन में दुश्मनी क्या होती है? जो दुश्मन चाहता है वो मैं ना आने दूँ, अना का मसला बना देता है। और इल्ला इबलीस को बंदे कत्ल हो जाए, इबलीस को क्या मिलेगा? उसे तो कुछ भी नहीं मिलता। दुनिया में फसाद बरपा हो जाए, करप्शन हो जाए, इक्तसाद जो है बातिल हो जाए, अल्लाह की परस्तिश ना हो, कि इबलीस को क्या फ़ायदा पहुँचता है? इबलीस की अनानियत, उसका तकब्बुर, ये हिस्स उसकी पूरी होती है। लिहाजा दुश्मन से दुश्मनी वो दुश्मन से दुश्मनी करना चाहता है, वो दुश्मन से दुश्मनी करना जानता भी है। अब उसकी दुश्मनी कैसे हमारे सामने आशकार होगी? अगर एक जगह पे हुज्जत इलाही ये कहते हैं, मैं अब अपने से मरबूत मिसालें आपकी खिदमत में पेश करूँ, क्योंकि बास तो बहुत आशकार हैं। जैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में फरमाते हैं कि अगर हक आशकार हो तो कोई मुश्किल नहीं है, अहले हक के लिए आशकार हक है, वो इख्तियार कर लेंगे। अगर बातिल आशकार हो कोई मुश्किल नहीं है, आशकार बातिल हो अहले हक तो बातिल के करीब भी नहीं जाएंगे। मुश्किल वहाँ पेश आती है कि जब हक और बातिल आपस में मखलूत हो जाएं, वो हक को देखते हुए बातिल को भी इख्तियार कर लेंगे, यहाँ से फितना पैदा होता है। नहजुल बलागा में इमाम अली अलैहिस्सलाम का ये फरमान है। लिहाजा ये जब बात हमारे लिए रोशन हुई तो हमें ये मालूम हो गया कि इबलीस जब आएगा और अपनी दौलत को बिछाएगा तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा फ़कत खालिस बातिल को खड़ा कर दे, वो तो हक और बातिल को मिक्स करके हमेशा पेश करेगा। इस जगह पे जो हुज्जत इलाही से वाबस्ता होगा और उनकी इताअत करेगा वो बच जाएगा, फ़कत इताअत की वजह से बचेगा। मुमकिन है कि अभी मारिफत और फ़हम ना पैदा हुआ, इताअत उसे बचा लेगी, लेकिन अगर मारिफत भी उस जन्म लेने लग जाए तो यहाँ पे और कुव्वत हासिल होती चली जाती है। इसके ऊपर हमारे पास कई वाक़यात हैं, ये वो कुलियात हैं कि जो आपको रोज़े अव्वल से लेके, ज़मीन की खिलकत के रोज़े अव्वल से लेके जब यहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम नाजिल हुए ता क़यामत, ये कुलियात आपको नज़र आएंगी। आदम अलैहिस्सलाम से टकराओ, हर नबी के साथ टकराओ, उसके बाद सालेहीन के साथ टकराओ, आइमे अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ टकराओ, ये वाक़यात हमारी कुतुब में हैं कि ये इंशाल्लाह आइंदा दरसों में आपकी खिदमत में पढ़े जाएंगे। क्योंकि कुरान ने जिक्र किया है कि दुश्मन भी समझो और दुश्मनी भी करो, यानी मारिफत दुश्मन की हासिल करो। क्यों मारिफत हासिल करो? ताकि दुश्मनी करो। मसलन शैतान ये कहता है कि हत्ता नेक कामों में ये नेक काम करो, ना करें शैतान से दुश्मनी के लिए, वो नेक काम भी नेक काम नहीं है जिसकी तरफ शैतान रग़बत दिलाता है। इसलिए इंशाल्लाह अभी वाक़यात आपकी खिदमत में आएंगे कि मोमिनीन के पास ईमान की चेहरे से आएगा, आबिद के पास आबिद के चेहरे से आएगा, हाफिज के पास हाफिज के चेहरे से आएगा, आलिम के पास आलिम बन के आएगा, फासिक के पास फासिक बन के आएगा। हर एक के पास एक तरह से नहीं है कि फासिक बन के आ जाए या उसकी शक्ल बिगड़ी हुई है। सबसे ज़्यादा नेक परहेजगार वो दिखाई आपको दे रहा होगा, जैसा कि अलकाफ़ी में एक रवायत में वारिद हुआ, ये रवायत भी आपके सामने पढ़ी जाएगी कि जब सकीफ़ा बनी साइदा के बाद पहले मिंबर के ऊपर बैयत का सिलसिला शुरू हुआ तो सबसे पहले जिसने आके बैयत की वो एक बूढ़ा शख्स था जो असा के हमरा आगे बढ़ा और बड़े बड़े सजदों के निशान थे और अल्लाह की हम्द सना बजा लाई और उसने कहा कि मरने से पहले अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ये मंज़र देख लिया। और उसने आके बैयत की और जनाब सलमान ने जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को इसकी ख़बर दी तो इमाम ने फरमाया कि पहला शख्स कौन है जिसने बैयत की? तो सलमान ने कहा कि एक शख्स था। कहा कि वो क्या अलामत है? अलामत बताई। जब अलामत बताएं तो इमाम ने फरमाया ये इबलीस था। इबलीस क्या शक्ल इख्तियार करके आता है? अगर दुश्मनी के तरीके नहीं से समझेंगे तो जो भी आप मरहला तय कर लें, आप इमाम के सहाबी हो जाएं, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बन जाएं, कुरान करीम के हाफिज बन जाएं, जंगों के मुजाहिद बन जाएं, रिश्तेदारियाँ आप पैदा कर लें घराने अहले बैत अलैहिस्सलाम से, इबलीस अगवा कर लेगा। क्योंकि इबलीस सिरात मुस्तकीम पे बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता? सवाल आप उभारे, सिरात मुस्तकीम पे हम चल रहे हैं, सिरात मुस्तकीम पे आ सकता है या नहीं? उसने तो कुरान में वाजे कहा मैं बैठूंगा कहाँ पे? सिरात मुस्तकीम पे। बैतुल्ला सिरात मुस्तकीम है या नहीं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हरम सिरात मुस्तकीम है या नहीं? लिहाजा मोमिन का जब तक कल्बी और मारिफत और इताअत का ताल्लुक नहीं होगा, खाली जिस्मानी इन मकामात से ताल्लुक़ उसे निजात नहीं देगा। कल्ब के अंदर और इताअत के हमरा हुज्जत इलाही से ताल्लुक़ पैदा करना पड़ेगा, ये है सर तस्लीम खम करना, वरना उस रात मुस्तकीम के ऊपर बैठ के अगवा करता है। हम इसके कुछ शजरा पढ़ते हैं जो बाज़ किताबों में हमारे यहाँ वारिद हुआ है और उसके बाद इंशाल्लाह उल अज़ीज़ हम आगे बढ़ेंगे। एक हमारे पास तफसीर बुरहान में तोहफ़तुल इख़वान से उन्होंने ज़िक्र किया बाज़ मुफस्सरीन का कौल, और उसमें उन्होंने उस कौल को फिर आगे वो सदी इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम तक उसको पहुंचाया है। इसमें अब हमारे पास ये जो बयान है तफसीर बुरहान के अलावा कहीं और नहीं है, यानी सनदन हमारे पास अगरचे ज़ईफ़ है, लेकिन मैं आपकी खिदमत में तफसीर बुरहान से पढ़ रहा हूँ क्योंकि इंतहाई मुतअख़्खिर ये तफसीर है, किसी और हमारे यहाँ मोतबर आसानी से नहीं आया, लेकिन हम ताइद और शवाहिद के तौर पर इससे अखज़ कर सकते हैं। मतलब इसमें इन्होंने लिखा है कि बाज़ मुफस्सरीन ने ज़िक्र किया है और इसनाद को हज़्फ़ करते हुए ज़िक्र किया है कि अबू बसीर ने इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से नकल किया है, और अबू बसीर ने कहा अखबिरनी अन खल्क़ आदम कैफ़ खलक़हुल्लाहु तआला, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को कैसे खल्क किया। फरमाए इन्नल्लाह ताला लम्मा खलका नार समूम, अल्लाह ताला ने जब नार समूम जहरीली आग से खल्क किया, वाहिया नारुन ला हर्र लहा वला दुखान, कि ना उसके अंदर हरारत है और ना उसका धुआं है, ऐसी आग है, सही है। व खलक मिनहल जान, इनसे जिन अल्लाह ताला ने खल्क किए, बस जिन की खिलकत आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत से पहले है। फ़ज़ालिक माना कौलही ताला, ये फरमान इलाही का माना है, वल जान खलकनाहु मिन कब्ल मिन नार समूम, और जिन उन्हें हमने खल्क किया इससे पहले नार समूम एक जहरीली आग से। व सम्माहा मारजन, और इसका नाम क्या रखा, मारज नाम रखा। व खलक मिन हू, बस इस जिन का जान, जान जो है वो मुफरद है या जमा का सीख है, इसमें फाइल है जान, सही है जान, इसलिए इसे वो दोस्त को नहीं जान कह सकते, दुश्मन को भी जान कह सकते हैं, बेशक वो आपकी नीयत ना पहचाने, आप कह सकते हैं आप मेरे लिए जान की हैसियत रखते हैं। तो वल जान, अलबत्ता इस जान के ऊपर शद है और दूसरी जान के ऊपर शद नहीं होता, सही है। इस जान का क्या है, जान इसमें फाइल है, मुफरत का है सीगा ना, यानी जिन से अगर इसमें फाइल का सीगा बनाए तो क्या बनता है, जानुन, एक जिन को खल किया और उस एक जिन का नाम क्या रखा, वह सम्माहू मारजन, उसे मारज नाम अल्लाह ताला ने करार दिया। वह खलका मिनहू जौजहू, और फिर इसी जान से उसकी जौजा भी बनाई। ये भी दिलचस्प चीज़ है कि इंसान की ज़िंदगी का एक अहम तरीन जुज़ वो उसकी ज़ौजा है, ज़ौजा के बगैर इंसान की ज़िंदगी अधूरी होती है। इसलिए नज़ूल आदम अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह ताला ने आदम के साथ हव्वा का रिश्ता पहले कायम किया या पहले उतारा फिर कायम किया रिश्ता, पहले रिश्ता कायम किया, इसीलिए इसका ये मतलब है कुंबे की सूरत में, इज्तमाई सूरत में आदम अलैहिस्सलाम की दुश्मनी इबलीस से हुई, इनफरादी सूरत में नहीं। लिहाजा फ़कत ये ना देखें कि मैंने दुश्मनी करनी है, माशरे पे निगाह रखें, घराने पे निगाह रखें, ऐसा कुंबा जन्म दे जो दुश्मनी करे इबलीस से, ऐसा माशरा जन्म दे जो दुश्मनी करे इबलीस से, ये कुरान करीम के आयात से पैगाम सादिर होता है हमारे सामने। लिहाजा दुश्मनी आदम व हवा दोनों की थी, इसलिए कई नाम अल्लाह ताला ने कई वाकयात रखे जिसमें इन दुश्मनी के मज़ाहिर बताए हैं, कि बास कुंबे थे कि जिसमें मियाँ बीवी दोनों ही दुश्मन हैं इबलीस के, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खानवादा, लेकिन बाज़ ऐसे हैं कि जिसमें एक फ़र्द या आधा कुंबा दुश्मनी में आधा कुंबा दुश्मनी में नहीं है, जैसे नूह अलैहिस्सलाम व लूत अलैहिस्सलाम, इनके कुंबे की मिसाल दी, या फिरआउन के कुंबे की मिसाल दी, जनाब आसिया दुश्मनी में है, फिरआउन दुश्मनी में नहीं है, वो उसकी विलायत में है। बस हर इंसान असल में दो दौलतों में से एक दौलत में ज़िंदगी बसर कर रहा है, या विलायत इलाही में है या विलायत इबलीस में है, चाहे नमाज़ें पढ़ रहा है, चाहे रोज़े रख रहा है, चाहे वो मक्का में रह रहा है, नजफ़ में रह रहा है, करबला में रह रहा है, हौज़े इल्मिया में पढ़ रहा है, कुरान हिफ्ज़ कर रहा है, खिदमत खल कर रहा है, जो भी कर रहा है, इन दो में से एक में है। तायुन किससे होता है, तायुन होता है कि उसकी नफ्स, उसका वजूद अगर वह हुज्जत इस्लामी के, हुज्जत इलाही के सामने वो तस्लीम है, इताअत में है, ये विलायत इलाही में। अगर हुज्जत इलाही के सामने तस्लीम नहीं है और उनकी इताअत में नहीं है तो कहाँ पर है, फिर विलायत इबलीस में है, विलायत शैतान में है वो। अब आइए आप आगे देखें, अब ये खिलकत के सिलसिले देखें। आदम अलैहिस्सलाम की भी खिलकत का इसी तरह सिलसिला अल्लाह ताला ने बयान किया है इस रवायत के मुताबिक, कि अगरचे ये मुरसला रवायत है और सनदन हम नहीं इसे सही सनद कहते, लेकिन इस किताब के हवाले से तायद के तौर पे एक मतलब को ज़िक्र किया जा सकता है। इसमें लिखा है कि वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहू, और इसी मारिज से ज़ौज को अल्लाह ने खल किया। वसम्माहा मारिजतन, और उसकी बेगम का नाम क्या रखा? मारिजा। फवक़अहा, फिर उसने नज़दीकी इख्तियार की इबलीस ने, सही है, वो माँ जो मारिज था ना, उसने मारिजा से क़ुर्बत इख्तियार की। फवलदत अलजान, अब यहाँ से क्या हुआ? एक और जान पैदा हुआ, सही है। इसलिए जो ज़्यादा ज़्यादा जान करे वो समझ ले कि किसी और कबील से है, सही है। सुम्मा वलद अल जान वलदन, फिर उस जान से एक और पैदा हुआ, उसकी भी आगे शादी हुई। उस जो तीसरा जान था उसने वसम्माहुल जिन, वो फिर अलिफ हट के जिन बन गया और जान से जिन आ गया। व मिन्हा तफर्रअत कबाइलुल जिन, और यहाँ से फिर उसका ख़ानदान बढ़ा और कई किस्म के कबाइल बन गए। व मिन्हा इबलीस अल्लाइन, इनमें से एक इबलीस है, इबलीस इन जन्नात में से एक है। यानी इसे पहले जो आपने पढ़ा है उसमें लाजिम नहीं है कि सारे भटके हुए ही थे, सारे गुमराह थे, ये तो नहीं हमने पढ़ा ना। बस जो ख़ानदान और कबाइल मुख्तलिफ जिन्नात के बन गए उनमें से एक जिन ऐसा पैदा हुआ कि उसने अपना मकाम और मर्तबा वो बहुत आली कर लिया, इबादात के ज़रिए से बहुत आली पहुंचा दिया। व मिनहुम इबलीस अल्लाइन, इनमें से एक, इन कबाइल जिन्नात में से एक इबलीस है। व काना यूलदुल जिन अज़्ज़कर वल उन्सा, यहाँ से क्या है कि उसके फिर मुज़क्कर और मोनस औलाद जिन पैदा हुई, सही है। यानी काना यूलत पढ़ें तो शायद ज़्यादा मुनासिब है कि विलादत तर विलादत होती रही, अलजान ज़कर वल उन्सा, बस जिन मुज़क्कर मोनस की विलादतें हुआ करती थी। व यूलदुल जिन कज़ालिका तो अमीने, और बाज़ जो है वो जुड़वा भी पैदा होते रहे। फसारु तिसईना अल्फन ज़कर अल उन्सा, यहाँ तक कि ये तादाद कितनी हो गई? तिसईन अल्फा, तिसईन नब्बे को कहते हैं, 90,000 मुज़क्कर मोनस। वसदादु हत्ता बलगु इद्दत रिमाल, यहाँ तक कि उनकी आबादी इतनी बढ़ गई जितनी रेत के ज़र्रात हैं, इतनी आबादी बढ़ गई। व तज़व्वज़ इबलीस बि इमरातिन मिन वुल्दिल जान, ने इसी जान की जो पीछे तज़किरा है उसकी औलाद में से एक खातून से मुअन्नस से इब्लीस ने अब इज़दवाज कर दिया, अब इब्लीस का इज़दवाज देंगे। युकालु लहा लहबा बिनते दौहा बिन सलबाइल, ये उसकी बेगम का नाम है इब्लीस की। फवलदत मिन्हु बियलकीस वतौना फी बतन वाहिद, दो उससे फर्जंद पैदा हुए इब्लीस के, एक है यलकीस और दूसरा है तौना। सुम्मा शालन व शाइला फ़ी बतन वाहिद, फिर उसी से शालन व शाइला पैदा हुए। सुम्मा दौहर व दौहरा, वो एक ही साथ जुड़वा पैदा हुए। सुम्मा शौजन व शैज़ा, सुम्मा फ़क्तस व फ़क्तसा फ़ी बतन वाहिद, एक ही पेट से ये पैदा हुए यानी जुड़वा थे। फ़कसुरा औलादु इबलीस लअनहुल्लाह, अल्लाह की इस पर लानत हो, इबलीस की फिर औलाद बहुत ज़्यादा हो गई, इसलिए उसकी मदद के लिए हमें नहीं साथ शामिल होना चाहिए, बहुत है उसकी औलाद। हत्ता सारु ला युहसाउन, इतने ज़्यादा बढ़ गए कि शुमार नहीं आप कर सकते। वकानु यहीमून अला वजूहिम कज़र्रे, कि वो अपने चेहरों के बल जो हैं गालिबन यहीमून, मुंह के बल ज़मीन की तरफ होना ज़ाहिरन ऐसा है, कज़र्रे व नमले, यानी वो चूंटियों की शक्ल में होंगे। अच्छा, ज़र कहते हैं बहुत छोटे छोटे कीड़े, सही, जरासीम नुमा। नमल कहते हैं चूंटियों को। वलबाऊ मच्छर मक्खी, वलजरादा टिड्डियाँ, वत्तैर परिंदे, वज़ुबाब मक्खियाँ। बाउज मच्छर को कहते हैं, ज़ुबाब मक्खी को कहते हैं, इसलिए ये सारे परिंदे बहुत ज़्यादा तंग करें तो आप इबलीस लाइन की औलाद कह के मार सकते हैं, सही है। गर्मियों में कुछ पीछे ही पड़ जाके, ये मक्खी मेरे पीछे ही पड़ गई है, कुरान पढ़ूँ तब भी है, नमाज पढ़ूँ तब भी है, यकीनन ये किसी और जगह से ही है। वकानु यस्कुनून मफाविज वल किफार, ये लोग जो हैं ये खुश्की के ऊपर रहते हैं और सुराखों के अंदर रहते हैं। किफार वल हयात, जोहड़ों में या ये हौज़ वगैरह के गिरत लेंगे। वल आजाम व तुरुक, मुख्तलिफ रास्तों के ऊपर ये रहते हैं। वल मजाबिल, जहाँ कूड़े वगैरह फेंकते हैं वहाँ पे होते हैं। वल कुनुफ, के कुनुफ कहते हैं कि वो जगह जहाँ पे जानवर बांधे जाते हैं, ऊँट हैं, भेड़ बकरियाँ नहीं हैं, उनके बांधे जाते हैं, गंद बला सारा उनके उधर ही गोबर वगैरह होता है उस जगह पे। वल अनहार, नहरों पे होते हैं। वल आबार, कुओं के ऊपर होते हैं। वन नवावीस, नवावीस जो हैं वो संदूक नुमा लकड़ी के जुस्सों को कहते हैं, जिसमें आप भी मैयत वगैरह रखते हैं या इस तरह के जो लकड़ी के संदूकचे बने होते हैं। फिर आगे देखें, वकुल्लु मौदईन वहिश, जहाँ पे भी वहशी दरिंदे हैं वहाँ पे होते हैं। हत्ता इम्तलाअतिल अर्द मिन्हुम, यहाँ तक ज़मीन इन्हीं से औलाद इबलीस से भर गई। सुम्मा तमस्सलू बिवुल्द आदम बाद ज़ालिका, औलाद वुलुद आदम, औलाद आदम के लिए ये तमस्सुल इख्तियार करते हैं मुख्तलिफ सूरतों में। कभी कोई जानवर बन जाएंगे, कभी कोई परिंदा बन जाएंगे, कभी किसी शक्ल में आ जाएंगे और अजियत करेंगे। वहुम आला सुअरिल खियल, कभी ये घोड़ों की सूरत में आ जाते हैं। वल हमीर, कभी ये गधों की सूरत में होते हैं। वल बिगाल, खच्चरों की सूरत में। वल इबिल, कभी ये ऊँटों की सूरत में है। वल माइज, ये जो गूसफंद वगैरह हैं इनकी सूरत में। वल बकर, गाय वगैरह। वल गनम, दुम्बे हैं। वल किलाब, कुत्ते हैं। वह सबा, वैशी दरिंदे हैं। वह सलाहिफ, और इस तरह के दीगर जो जानवर हैं। फलम्मा इम्तलातिल अर्द मिन ज़ुर्रियत इबलीस, जब इबलीस की ज़ुर्रियत से ज़मीन भर गई। लअनहुल्लाह, अस्कनल्लाहुल जान्नल हवा दून असमा, तो अल्लाह ने जिन्नों को कहाँ पे ठहरा दिया? हवा में, आसमान के ऊपर नहीं, हवा में। इसलिए जिन्नात हवा में होते हैं। वह अस्कनुल्दल जिन फि समाए दुनिया, दुनिया के आसमानों में जिनकी औलादें ठहरी हुई हैं। वह अमरहुम बिल इबाद व ताअत, और इन्हें इबादत और इताअत का अल्लाह ने जिन्नात को हुक्म दिया। बस इबलीस की औलाद अलग हो गई अगरचे जिन से, और बकिया की औलाद अलग है। वह हुआ कौलहु तआला, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि फ़कत अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह ने मैंने जिन और इंस को खल्क किया है। वकानत अस्समाउ तफ्तखिरु अलल अर्द, ज़मीन जो है वो आसमान ज़मीन के ऊपर किया करता था, फ़ख्र किया करता था। फिर आगे ये सिलसिला है यहाँ तक कि बात आ जाती है, सुम्मा रफ़ा अल्लाहु इबलीस इला समाए दुनिया लिकसरत इबादत ही, क्योंकि ज़मीन के ऊपर हुआ करता था इबलीस, तो कसरत इबादत की वजह से अल्लाह ने इसको आसमान दुनिया के ऊपर खींच लिया। फ़अबद अल्लाह ताला फ़ीहा अल्फ़ना, आसमान के ऊपर उसने 1,000 साल इबादत की, दुनिया के आसमान पर। सुम्मा रुफ़िया इला समाए सानिया, फिर अल्लाह ने उसे दूसरे आसमान तक विलाया, वो कुदरत दे दी और वहाँ इस्तताअत पैदा की। फ़अबद अल्लाह ताला फ़ीहा अल्फ़ना, वहाँ पर 1,000 साल अल्लाह की इबादत की। फ़लम यज़िल यअबुदिल्लाह फ़िकुल्ल समाइन, हर आसमान के ऊपर अल्फ़सना, 1,000 वो इबादत करता रहा। हत्ता रफ़अहुल्लाहु इला समाए सबिया, यहाँ तक कि 7वें आसमान तक अल्लाह ने उसे पहुँचा दिया। वकाना अव्वल यौमिन फ़िस समाइल उला अस्सब्त वल उहद फ़िस सानिया, हत्ता काना यौमुल जुमा सुय्यिरा फ़िस समाए सबिया, के रोज़ जुमा वो पहुँच गया 7वें आसमान पर, ये हफ़्तों की तरतीब से। वकाना यअबुदुल्लाह हक इबादत ही, जैसा अल्लाह की इबादत का हक है वैसी इबादत किया करता था। व युवाहिदहु हक तौहीद ही, और हकीकी तौहीद अल्लाह की बजा लाता था। वकाना बिमंजिलतिन अजीमतिन हत्ता इज़ा मर्रा बिही जिब्रील व मीकाईल, कि इतनी अजीम मंजिलत पे पहुँच गया कि उसके पास से जब जनाब जिब्रील व जनाब मीकाईल गुजरे। यकूल बादहुम लिबाज़ैन, तो उनमें से बाज़ ने दीगर बाज़ को कहा, लक़द उतिया हाज़ल अब्द मिनल क़ुव्वति अला ताअतिल्लाहि व इबादतिही मा लम युता अहद मिनल मलाइका, अल्लाह ने इस आबिद को वो मकाम दिया है इसकी इबादतों की वजह से कि मलाइका में से किसी एक को भी अल्लाह ने वो मकाम अता नहीं किया। फ़लम्मा काना बाद ज़ालिका बिदहरिन तवील, फिर پھر ایک زمانہ طویل گزر گیا. امر اللہ تعالی جبرائیل ان یہبط الی الارض, جبرائیل کو حکم دیا کہ زمین کی پر اترے. ویقبض من شرقها وغربها وقعرها وبسطها قبضتا, اور شرق اور غرب اور تمام جو گڑے ہیں اور اوپر کی جو مٹی ہے ان سب کے نمونے لے کے مٹی کے لے آئیں. لیخلق منها خلقا جدیدا, ایک نئی خلقت کو اللہ خلق کرے. لیجعلها افضل الخلائق, اور اس کو سب سے افضل ترین خلقت اللہ تعالی قرار دے دے. یہ ہمارے پاس ایک روایت کا بیان تھا, اور اس کے بعد پھر نیچے دوسرا بیان ہے کہ اسی کی تفصیل ہے اس میں, لیکن ہم ابھی اس تفصیل سے تھوڑا کنارہ کش ہوتے ہیں, اس کو اگلے درس میں پڑھیں گے. ہم ایک واقعے کی طرف آتے ہیں. بصائر الدرجات میں یہ واقعہ درج ہے, اور اس میں بیان کرنا مقصود ہے کہ ہم ابلیس کو جان سکیں, پہچان سکیں. ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ ابلیس بعد کے جنات میں سے ایک جن نکلا, اور اس نے عبادت کثیر کی, اللہ کی توحید کثرت سے بجا لائی. اس منزل کی پر وہ پہنچ گیا کہ اس کو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا, اور پھر ایک آزمائش میں گرفتار ہوا, اور افضل الخلائق کے ٹکر لینے کی بنیاد پہ یہ نتیجہ نکلا. لیکن ابلیس کی جو اولاد ہے وہ ساری جہنمی ہے. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جاتا ہے, اور اس کے اوپر اختتام کرتے ہیں. بقیہ انشاءاللہ تعالی ہم کل کے دن بقیہ آیات کا مشاہدہ ابلیس کے حوالے سے کریں گے کہ خود ابلیس کی شخصیت سامنے آئے, کیونکہ اس دنیا میں جتنے مجرمین ہیں حجت الہی کے مقابلے میں جو اصل امام ہے, جو اصل راہبر ہے, وہ ابلیس ہے. ابلیس کی طرف سے وحی بھی ہوتی ہے. اب طریقے واردات آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کے کل بیان کیے جائیں گے, تب آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو تمام شیاطین کا سردار ہے یہ ہم جیسوں کو لفٹ نہیں کراتا, صحیح ہے, یہ ٹکر لیتا ہے انبیاء و ائمہ علیہ السلام یا جناب سلمان اور اس درجے کے لوگوں سے. ہم جیسوں کے لیے اس نے نیچے بہت سارے چیلے اپنے بٹھائے ہوئے ہیں, صحیح, جو اس کی اپنی نسل سے ہیں, اور اس کے نسل سے اگر کسی بشر نے دوستی کر لی ہو تو بشر بھی اس کی ولایت میں آ جاتے ہیں. لہذا یہ چیز ہمارے سامنے آئی کہ ابلیس اوپر بیٹھا ہوا ہے, اس سے ہمارا ٹکراؤ ایسا نہیں ہوتا ہے, لیکن اس کے اوپر اثرات سارے ہوتے ہیں جو حجت الہی کی اطاعت جب بھی بجا لائے گی یہ چیخے گا چلائے گا. اس لیے بعض روایات میں نے عرض کیا کہ وارد ہوا ہے طولانی سجدے کیا کرو, یہ چیختا ہے چلاتا ہے. اور یہ بعض واقعات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے بھی اس کے چیخنے چلانے کے. طولانی سجدے کرو, اس سے اس کو اندر اور اپنی حقارت کا احساس بڑھ جاتا ہے کہ میں نے یہ تکبر کیا تھا, اور آج بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے اور اس کی حجت کو تسلیم کرتے ہوئے اطاعت کرنے والے آج بھی موجود ہیں. آئیں یہ واقعہ تیزی سے دیکھتے ہیں, اور اس کو کیونکہ یہ واقعہ تھوڑا سا طولانی ہے, میں آپ کی خدمت میں آغاز عربی میں پڑھتا ہوں اور بقیہ اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ ہے بصائر الدرجات کی روایت. بصائر الدرجات بڑی ہماری ایک قدیمی کتاب ہے, اور فضائل اہل بیت علیہم السلام میں اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے. زیارت ناموں میں جامع کبیرہ سے بہتر زیارت نامہ نہیں ہے, اور فضائل اہل بیت علیہ السلام میں بصائر الدرجات سے قدیمی ترین بھی اور بہترین کتاب بھی نہیں ہے. حسن بن صفار جو ہیں, محمد بن حسن بن صفار, یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بھی رہے ہیں. 290 ہجری میں ان کی وفات ہے. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے, معروف کتاب ہے. اختلاف ہے ہمارے علماء میں, یہ کتاب جیسے لکھی گئی تھی ویسی پہنچی ہے یا نہیں پہنچی. ایک بڑی تعداد اس کے اوپر اعتماد رکھتی ہے کہ آج جو بصائر الدرجات کے نام سے کتاب ہے یہ وہی کتاب ہے, اور بعض جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا طریق ہم تک نہیں پہنچا. اس کے اندر جو کتاب میں آپ کی خدمت میں روایت ذکر کی گئی ہے, یہ روایت اگر سند کے طور پہ دیکھیں تو مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے, لیکن اس کا ہم جبران کر سکتے ہیں, اس لیے اس کو بھی ہم معیت کے طور پہ لیں گے, تائید کے طور پہ لیں گے. اس چیز کو ذہن نشین رکھیں کہ جو حدیث سندی ثابت نہیں ہے اسے براہ راست فوراً نسبت قوی طور پہ نہیں دے سکتے, لیکن اس کے جو متن ہیں وہ بعض اوقات یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ امام سے صادر ہوئی ہوگی. اس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بصائر الدرجات جلد نمبر 1 صفحہ 101 میں, امام صادق علیہ السلام سے حسن بن محبوب نقل کرتے ہیں عن رجلن ایک شخص سے، اب وہ شخص کا نام نہیں اس لیے مرسل ہے، لیکن اگر ہم یہ مبنی لے لیں کہ حسن بن محبوب یہ معروف شخصیات میں سے ہیں اور یہ جن سے نقل کریں وہ ثقہ قرار پاتا ہے، تو اس مبنی کے تحت ممکن ہے جبران کیا جا سکتے. بہرحال امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بین جبال تہامہ، تہامہ پہاڑی سلسلہ جو ہے پہاڑ کے درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اذا رجل علی اکازہ، اچانک ایک شخص نمایاں ہو گیا، اور اکازہ کہتے ہیں کہ وہ جو نیزہ ہوتا ہے نیزے کے نیچے وہ جو لوہے کی نوک ہوتی ہے اسے زمین پہ رکھ کے اس نیزے سے ٹیک لگانے، اس نیزے کی نوک کا زمین کے اوپر گڑا ہوا ہونا، یا اس نوک کو اکازہ کہتے ہیں. ہوتا یہ تھا کہ پرانے دور میں اس نیزے کو ٹیڑھا کر کے زمین پہ گاڑتے تھے اور ٹیک لگا کے اس کے ساتھ رکھتے تھے، سہارا لے کے رکھتے تھے، جیسے عصا سے سہارا لیا جاتا ہے. وہ شخص بھی اسی طرح سے لے کے کھڑا تھا اور ٹیک لگائے ہوئے تھا. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا لغت جنی، جنی کی لغت میں، یعنی جن تھا وہ. وطئهم من جبال تہامہ، یہ جنات جو ہیں ادھر جبال تہامہ میں آتے جاتے تھے، یعنی انہی جگہوں پہ مسکن تھا. وکانا وقال من الرجل، کون ہو تم؟ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس سے بات چیت شروع کر دی، جنی زبان میں بات چیت کی ہوگی. اس نے کہا کہ حامت بن ہیم بن لاقیس السلیم بن ابلیس، شجر نسب ابلیس تک پہنچتا تھا، یعنی ابلیس کا آپ سمجھے کہ پڑ پوتے کا پوتا، صحیح. حامتو کہ بعض جگہوں پہ حام بھی آیا ہے، ادھر گولتا ہے، بعض جگہوں بقیہ جگہوں پہ فقط حام ہے. حامتو ابن ہیم بن لاقیس بن سلیم بن ابلیس، ابلیس کا بیٹا سلیم، اس کا بیٹا لاقیس سلیم، ایک ہی شخص ہے لاقیس سلیم، لاقیس سلیم کا بیٹا ہیم، ہیم کا بیٹا حام، بس پڑ پوتا ہوا ابلیس کا، صحیح. کیونکہ عمریں بھی لمبی ہوتی ہیں جنات کی، حتیٰ کہ آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ اپنے استاد سید علی قاضی طباطبائی رحمت اللہ علیہ کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے جنات کے ایک گروہ سے ملاقات کی، تو ان سے پوچھا کہ آپ کے ادھر کافر ہوتے؟ اس نے کہا کافر ہوتے ہیں، اور کہا کہ مسلمان ہیں؟ کہا مسلمان بھی ہوتے ہیں. کہا کہ شیعہ یا سنی؟ تو اس نے کہا کہ جنات میں سنی نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارے اجداد میں جنہوں نے غدیر خم کے موقع پہ موجود تھے وہ اجداد آج بھی موجود ہیں، اور وہ گواہی دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان ولایت کیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا کے، اس بنیاد پہ جنات جو مسلمان ہوتے ہیں وہ سارے شیعہ ہوتے ہیں. یہ بہرحال ان کا یہ بیان تھا. تو بہرحال یہ پڑپوتا تھا. قال لیس بینک و بین ابلیس غیر ابوائن، کہ صرف دو باپ کا فاصلہ ہے ابلیس سے تمہارے درمیان. قال لا، قال اکل تو عمر الدنیا، یعنی مراد یہ تھی ابلیس کے درمیان اور تمہارے درمیان دو والدین کا فاصلہ اتنی طولانی عمر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک یہ پڑ پوتا پہنچا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے دنیا کی عمر کو کھا لیا، یعنی بڑی طویل عمر ہے. قال علی ذلک کم اتا علیک، کتنی مدت تیرے پاس گزری ہے؟ تو اب سنانے لگا کنت ایام قتل قابیل حابیل، قتل قابیل حابیل، کہ میں ان ایام میں بھی تھا جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا. اخاہ غلاما عال الاقام و انہا عن الاعتصام و آمر بفساد طعام، پھر بتایا کہ میں کیا کیا کام کیا کرتا تھا کہ فساد کو برپا کرتا تھا، اور اس طرح سے دیگر ترجمے کو مختصر کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عمر الله عمل الشيخ المتوسم والشاب المؤمل قال دع يا محمد. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اللہ کی کھاتے ہوئے کہا کہ شیخ جو متوسم، وسامہ کہتے ہیں علامات لگانا، یعنی جو اپنے آپ کو متزین کرے، بوڑھا ہے لیکن متزین کرتا ہے جیسے جوان، کیونکہ جوان نے تو ازدواج کرنا ہے، تو بوڑھے کے لیے یہ عمل تعجب آور ہے. اور وہ جو جوان ہے جو بہت امیدیں لگا کے رکھتا ہے، تو اس کے بارے میں کہا اس نے کہ چھوڑے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ان کا تذکرہ. بہرحال نیچے بات آئی، کیونکہ ابھی ٹائم ہمارے پاس ختم ہوا چاہتا ہے، और तस्करा नीचे आता है, यहाँ तक कि ये ईमान ले आया, ये जो पढ़ पोता है ये ईमान ले आया, और फिर उसका तस्करा बकिया इंशाल्लाह ताला हम कल पढ़ेंगे आगे नीचे, चूंकि रिवायत तोलानी है, अम्बिया अलैहिस्सलाम का तस्करा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सवालात हैं उनकी जानिब से वो उसका तस्करा है, तो कल हम इसको पढ़ेंगे ये बयान करने के लिए कि इब्लीस के चुंगल और उसकी विलायत से आज़ाद हुआ जा सकता है, और इसी को मौजू कलाम बनाते हुए वो वाक़यात अहादीस से आपके सामने पढ़े जाएंगे कि जिनसे ये साबित होता है कि वो अहले ईमान के पास ई मोमिन बन के आता है, आबिद के पास आबिद बन के आता है, ताकि तरीके वारदात को हम उसके समझ सकें। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदिना मुहम्मद।